أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة علق کے بارے میں یہ بات تو سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو پہلی وحی آئی تھی یہ اس کی پہلی پانچ آیات جو ہیں یہ پہلی وحی ہے اور یہ بہت ہی معنی خیز ہے. ذرا غور کریں کہ کیا لفظ لکھا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق. اقرا باسم ربک الذی خلق. اب دیکھیے یہاں پہ لفظ آیا اقرا. اب اللہ کو یہاں پہ دیکھیں نا, یتلو نہیں کہا, کل نہیں کہا, یہ الفاظ نہیں کہے, بلکہ کیا کہا جا رہا ہے, اقرا یعنی پڑھو, ریڈ اٹ آؤٹ. یہاں پہ ریڈنگ کروائی جا رہی ہے. بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تخلیق کیا, یعنی جس نے تجھے تخلیق ہی اس لیے کیا کہ تو یہ تحریر جو تیرے سامنے رکھی گئی ہے اسے پڑھ. اب آپ غور کریں کہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبرائیل امین اس وقت کوئی ڈاکیومنٹ وہاں سامنے رکھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ اس تحریر کو پڑھیں. اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ میں امی ہوں, تو اس پہ انہوں نے انہیں سینے سے لگا کے زور سے بھینچا. اس کے بعد پھر کہا کہ پڑھ, انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے پھر سینے سے لگا کے انہیں بھینچا, پھر کہا کہ اقرا پڑھ, لیکن انہوں نے پھر یہ تیسری بار جب یہ کہا, انہوں نے تیسری بار جب گلے سے لگا کے سینے سے لگا کے ان کو زور دیا. یہ روایت ہمیں ملتی ہے. یہ جو روایت ہے آگے اس میں یہ خاموشی ہے کہ کیا ہوا, کہ حضور نے پڑھا یا نہیں پڑھا. پھر اس کے بعد وہ کپ کپاہٹ کا طاری ہونا, وہ پانچ چھ میل کا فاصلہ طے کر کے بڑی نکاہت کے عالم میں ان کا گھر آنا, اور پھر یہ سارا واقعہ سنانا حضرت خدیجہ کو, یہ ساری باتیں سب کو پتہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی ڈاکیومنٹ رکھا گیا تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پڑھ, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. اور انسان کو تو تخلیق ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ یہ ڈاکیومنٹ پڑھنے کے قابل ہو جائے. تو سوال وہی رہا جو کہ بعض لوگوں کے نزدیک تو ملین ڈالر کوسچن ہے کہ وہ کیا ڈاکیومنٹ تھا. تو اندازے کی باتیں ہیں, اب ہمارے پاس اس کی کوئی سند تو ہے نہیں ہے, لیکن آگے کچھ اشارے ہیں کہ یہ کتاب المبین سامنے لائی گئی اور کہا گیا کہ اس کو پڑھیں, اور کہا گیا کہ انسان کو الگ سے, یعنی اب یہ الگ خون کے جماؤ کو بھی کہتے ہیں, جمے ہوئے خون, یا لوتھڑے کو بھی کہتے ہیں. ساتھ میں یہ لفظ معلق سے بھی ہے اور تعلق سے بھی ہے. تو یہ من علق, یعنی کہ انسان کو کیسے تخلیق کیا جاتا ہے, وہ ساری بات دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ انسان کو تخلیق اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ڈاکیومنٹ پڑھنے کے قابل ہو جائے. اقرا پڑھ, و ربک الاکرم, اقرا پڑھ, اور تیرا رب تجھ پہ بڑا کرم کرے گا. اور رب کیسے کرم کرے گا, اکرم الذی علم بالقلم, اور تیرا رب سکھاتا ہے علم بالقلم, قلم کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں, ساری زندگی انہوں نے کبھی قلم نہیں پکڑا, हत्ता के जब जरूरत पड़ी दस्तखत करने की डॉक्यूमेंट्स पे, बड़े इंपॉर्टेंट कागजात पे, तो वो मोहर लगा दिया करते थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, तो कलम का मतलब क्या यहाँ पे? अब आप अपना कलम या बाल पॉइंट या वो सरकंडे का तराशा हुआ कलम लेके, अब कलम से कैसे सिखाया जाता है? तो जाहिर है आप कहेंगे कि जी किताब पढ़ के उसके नोट्स बनाना कलम है, कलम का इस्तेमाल है, तो उससे आपके जहन में उसके मफाहीम जो आप पढ़ रहे हैं या लिखते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह आपके जहन नशीन हो जाते हैं। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, और फिर क्या कहा कि अल्लमल इंसान मा लम यालम, और इंसान को सिखाया या उसको इल्म दिया मा लम यालम, जो वो नहीं जानता था, जो वो नहीं जानता वो सिखाया जाता है। अब गौर करें, जब वो जानता नहीं है तो उसको सिखाया कैसे जा रहा है, और वो भी कलम के जरिए? ये भी एक मिलियन डॉलर का सवाल बना। तो इस पर अगर हम गौर करें तो मैं समझता हूँ कि कलम से मुराद है कि ये जो तवज्जो है, तवज्जो यानी जो हम कंसंट्रेट करते हैं, तवज्जो को अगर आप उसकी तस्वीरी शक्ल बनाएं तवज्जो की, तो जब एक नुक्ते पे फोकस हो जाती है तो वो आगे से सुकड़कर एक नुक्ते में ढल जाएगी। जब आप देखें ना किसी चीज को कलम कहते हैं जिसकी आगे चोंच हो, कहते हैं ना कलमी शोरा, यानी शोरे या चीनी जो है इसकी कलमे होती हैं ना, ये कलमाओ, अमले कलमाओ। कलम कैसे बनती है? जब उसकी चोंचें बन जाएं, यानी उसकी एजेस बन जाएं। तो ये जो कलम है ये असल में हमारी कंसंट्रेशन जब इस दर्जे पे पहुंच जाए कि वो एक नुक्ते में ढल जाए, तो देखें ना आपके पूरे जहन से उस नुक्ते तक जो शक्ल बनती है वो एक बाल पॉइंट की तरह ऐसे ऊपर से बड़ी और नीचे से छोटी होके एक नुक्ते में ढल जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अल्लमा बिल कलम यानी तवज्जो की फोकसिंग की वजह से वो सीखता है। यानी ये रब जब कर्म करता है और आपकी तवज्जो में इतनी फोकसिंग आ जाए, इतनी कंसंट्रेशन आ जाए, वो इतनी मरकूज हो जाए कि वो मुर्तकिज हो जाए, तो फिर क्या कहा अल्लमल इंसाना, तो फिर इंसान सीखता है मा लम या लम, जो नहीं जानता, जिसका उसको इल्म नहीं होता, फिर वो भी बातें उसको पता चल जाती है। ये पांच आयात जो थी ये इब्तदाई वही की बातें हैं। जरा उस पसे मंजर में देखें और कुरान की तरतीब नजूली में देखें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है कि जी अल्लाह तबारक व ताला, अब हमने इसका जाहिरी मतलब लिया कि जी अल्लाह कह रहा है कि भी पढ़ना लिखना सीखो, भाई तो हजूर ने क्यों नहीं सीखा हैं भैया? आखिर तक वो देखें ना, किसी बंदे दस्तखत करना तक नहीं सीखा, कलम पकड़ा ही नहीं हाथ में, और यहाँ अल्लाह कह रहा है कि अल्लामा बिल कलम। तो इन बातों पे ज़रा गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जहन में इसके और बहुत से नुकात खुल जाएंगे। कल्ला, ठीक है, इन्नल इंसान लयतगा, यानी कि अल्लाह कह रहा है कि भाई मैं तो सिखाना चाह रहा हूँ और उसको सिखाता हूँ, और वो चीज़ें सिखाता हूँ जो वो नहीं जानता, लेकिन इन्नल इंसान अल्लाह यतगा, लेकिन इंसान जो है वो तगा करता है। तगा का मतलब है रास्ते से हट जाता है, कि तवज्जो एक नुक्ते पे मरकूज नहीं रहती उसकी, वो एक नुक्ते से हट जाता है, बिखर जाता है। अर राहुल राहुस्तगना, वो देखता है, अर राहु खुद को देखता है, वो खुद को देखता है तगना, जैसे कि वो गनी है, उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इन्ना इला रब्बे कर रोजा, हालांकि बात क्या है कि उसको अपने रब की तरफ रजू करना है, यानी पीछे देखें क्या बात चल रही थी कि इंसान जो है उसको तो हम सिखाना चाहते हैं लेकिन वो तगा करता है और खुद को बड़ा मोतबर समझता है, मुझे इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, इन चीज़ों से क्या होगा, वो इस चीज़ को खातर में नहीं लाता। इन्ना इला रब्बे कर रोजा, और हालांकि उसका रजू अपने रब की तरफ रहना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में कि उसने अपने रब की तरफ ही रजू करना है, रहना चाहिए ज्यादा अच्छा है। अरायत अल्लज़ी यनहा, देखा तुमने उसको जो मना करता है, यनहा नहीं नहीं मना करना, अरायत अल्लज़ी देखा तुमने उसको यनहा मना करता है, अबदन इज़ा सल्ला बंदे को जब वो हालत नमाज में होता है नहीं जब वो ताल्लुक जोड़ रहा होता है, ताल्लुक जुड़ा होता है उसको मना करता है। हर उस बंदे को दुनिया में ये पंगे सहने पड़ते हैं अगर उसका शऊर लाशऊर से मुत्तसिल हो जाए। लफ्ज़ देखें मुत्तसिल और स्वल का तर्जुम शक्ल कितनी मिलती है, यस बल्कि मुत्तसिल का लफ्ज़ इसी स्वल की से मश्तक है। अबदन इज़ा सल्ला, जब बंदा रबते में होता है अपने अल्लाह के साथ तो वो आके मना कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। अरायता इन कान अलल हुदा, अरायता क्या आपने देखा इन कान अलल हुदा, अगर वो हदायत पे होता या वो बात को खुद भी समझ रहा होता, ओ अमर बित तकवा, या वो तकवे के साथ काम करता, बे तकवा यानी एहतियात के साथ काम कर रहा होता, तो क्या होता रायता इन कज़्ज़बा व तवल्ला, और देखें जरा कैसे वो झुटलाता है और मुंह फेरता है। अलम यालम अन्नल्लाहा यरा, क्या वो नहीं जानता, अलम क्या वो नहीं जानता, यालम क्या अल्लाह जानता है, बा अन्नल्लाहा यरा, क्या वो नहीं जानता कि उस पे अल्लाह निगरान है, अल्लाह उसको देख रहा है। अब देखिए ना इसी बात को लेके राह सलूक पे चलने वाले सालिकों से क्या कहा जाता है कि वो ये तसव्वुर जमाए रखें कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इसी को मुराकबा मर्तबा एहसान कहते हैं। अलम यालम बा अन्नल्लाहा यरा, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह उसको देख रहा है। कल्ला लैन लम यंतही लनस्फाम बिन नासिया, अब देखें कल्ला लैन लम यंतहा मना करना, अगर वो बाज ना आया, अब यहाँ पे अगर वो अपनी करतूतों से मना ना हुआ तो क्या होगा, ले नस्फान बिन नासिया, तो हम उसको, अब ये इसका लफ्जी तर्जमा ये है कि हम उसको पेशानी के बालों से पकड़ के, पेशानी के बालों से पकड़ के घसीटेंगे। ज़रा गौर करें, नासिया कहते हैं पेशानी को, ठीक है, बिन नासिया साथ पेशानी के, नस्फाम क्या हो गया, ज़रूर घसीटेंगे यानी खींचेंगे। अब गौर करें कि पेशानी से पकड़कर खींचने में क्या मतलब हुआ, तो पेशानी से मुराद हुआ हमारे जो सोचें, जो हमारे अफकार हैं, जो हमारी पेशानी किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, नासिया, जाहिर है कि हमारी पूरी शख्सियत की। तो क्या कह रहे हैं, नासियतिन काज़िबातिन खातियातिन, वो पेशानी जो झुटलाती थी और खताकार थी, तो जाहिर है पेशानी तो नहीं झुटलाती, ना ही पेशानी खताएं करती है, तो नासिया हमारी पूरी पर्सनैलिटी का जिक्र आ गया। वैसे बड़ा इबरत अंगेज वो मंजर है कि अल्लाह किसी को आप सामने से दबोच के उसके सामने के बालों को पकड़ के खींचें, तो ये है तो बड़ी इबरतनाक, लेकिन सिर्फ पेशानी को उस सेंस में लेना काफी नहीं है। फल यद्दउ नादिया, यानी फिर वो बुला ले जिसको उसने बुलाना है, आवाजें दे ले। नादिया बुलाना, आवाजें देना, निदा करना। फल यद्दउ पुकारे, अब दुआएं करे, यद्दउ दाल दुआ करना पुकारना। फल यद्दउ नादिया, तो बुला ले वो अपने, अब जिन लोगों को भी उसने बुलाना है या जिसको चाहे वो पुकारे। सनद्दउ ज़बानिया, तो कोई नहीं हम भी बुलाएंगे फिर अपने घरकारों को, हम भी बुलाएंगे अपने हरकारों को। और अगली आयत जो है वो क्लाइमैक्स है, कल ला हरगिज नहीं, ला तो हू मत करो उसकी अतात, वस्जुद और सजदे में गिर जाओ, वक्त अरेब और करीब हो जाओ। या आया सजदा भी है, यानी ऐसों की आपने अतात नहीं करनी, ऐसों की बात नहीं माननी जो काजिब हैं या खताएं करते हैं। और क्या कहा कि तुम सजदा रेज होके मेरे करीब हो जाओ, वक्त अरेब करीब हो जाओ, यानी सजदा जो है ये कुर्ब हक का, कुर्बत इलाही का सबसे आसान तरीका है। यहाँ पे मैं आपको सजदे, जब आप नमाज पढ़ लें तो एक सजदा इस तरह करें जो सिर्फ अल्लाह वास्ते का सजदा हो, यानी अपनी नमाज मुकम्मल करके आप सजदे में चले। सजदे में जाके आप दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके अंगूठे को ये शहादत की उंगली के निचले पोर के ऊपर रखें, मुट्ठी बंद होगी तो ये देखें अंगूठे का ये नकल उभर आया, ये नाखून के पीछे जो हड्डी है ये उभर आई। इस तरह से मुट्ठी बंद करके सजदे में रखें और इन दोनों नकल्स को, दोनों हाथों के अंगूठों के नकल्स को कनपट्टी से जोड़ दें। कनपट्टी से जोड़कर आप जरा बेशुमार, ला तादाद, अनगिनत, यानी गिनती नहीं गिनती, गिनती के बगैर कहिए सुभान रबी अलाला, सुभान रबी अलाला। और साथ में ये तसव्वुर जमा लें कि आप अल्लाह के सामने हाजिर हैं, अल्लाह तबारक व ताला अर्श पे मुतमक्किन हैं और आप अल्लाह के कदमों में सजदा रेज हैं। अब इस हालत में आप जो दिल चाहे अल्लाह रब्बे करीम से अपनी मारूजात पेश करें, अपनी दुआएं करें, अपनी बात करें, सवाल पूछें, आप यकीन करें वहां से बाकायदा जवाब अलका होंगे, यानी वो किसी भी तरह हो सकते हैं। तो इसको जरा ट्राई करके देखिए तो फिर बताइएगा कि कल कि कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस करना। ठीक हो गया जी, मेहरबानी जी। ये इससे अगली सूरत जो है सूरह कदर है, इससे अगली सूरत जो है सूरह कदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अनज़लनाहू फी लैलतिल कदर। अब जरा गौर करें, हमने क्या तर्जमा किया, कुरान को नाजिल किया लैलतुल कदर में, यहाँ किस लफ्ज का तर्जमा कुरान है। इन्ना अनज़लनाहू, उसको नाजिल किया, फी मैंने में, लैलतुल कदर, लैलतुल कदर में, लैल कहते हैं रात के हवास की रफ्तार को। तो कदर जिसकी मकदारें या रफ्तारें जो हैं वो आम रातों से डिफरेंट हैं। अब किसको नाजिल किया ये नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि उसको नाजिल करते हैं लैलतुल कदर में। वो मादरा का मा लैलतुल कदर, मादरा का मा लैलतुल कदर, और तुम्हें क्या मालूम, यानी इसका इदराक हासिल करो कि लैलतुल कदर क्या है। अगली आयत में लैलतुल कदर से मुतारिफ कराते हुए फरमाया कि लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कदर के हवास जो हैं या उसकी रफ्तार जो है वो बेहतर है या ज्यादा है मिन अल्फ शहर, हजार महीनों से। अब ये हजार महीनों से रफ्तार को कैसे इक्वेट करेंगे, ये बात हजूर मुर्शिद करीम ने बताई कि एक महीने में 30 दिन हो तो 30 रातें होंगी, 30 सुबह होंगी और 30 शामें होंगी, ठीक है। तो हजार महीनों में क्या हुआ, ये 30,000 दिन, 30,000 रातें, 30,000 सुबह और 30,000 शामें, तो ये एवरेज, मतलब आम सहम लफ्जों में कहें कि जी 60,000 से ज्यादा है, ठीक है, या कहें कि ये तकरीब लगभग 70,000 गुना हो गई। तो गोया लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर, यानी लैलतुल कद्र जो है वो हवास की रफ्तार है जो 70,000 गुना है। अब देखें 70,000 गुना नहीं कहा बल्कि खैर मिन अल्फ शहर कहा। अब देखिए बता रहे हैं कि क्या चीज नाजिल की, तनज्जुलुल मलाइकतु वरूहो फीहा बे इज़्ने रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्र। क्या बताया कि इसमें नजूल करते हैं मलाइका और रूह फीहा इसमें बे इज़्ने रब्बिहिम आपके रब के हुक्म से या इजाजत से, इज़्न इजाजत को कहते हैं, फीहा बे इज़्ने रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्र, मिन कुल्ले अम्र सारे कामों के लिए, मिन कुल्ले अम्र सब कामों के लिए, सलामुन हैया हत्ता मतलाइल फजर, और वो पूरा करते हैं उन कामों को पेशतर इसके के फजर तुलू हो जाए। सदकल्लाहुल अजीम। जी कोई सवाल
है, बहुत फर्क पड़ गया, वो की तरह
असल में आपने बात सुनना गवारा नहीं किया प्रॉपरली। रात के हवास जब 70,000 गुना हो जाएं, ठीक है, ये जब भी हो जाए जैसे भी हो जाए, इसमें कहां लफ्ज है रमजान, हेलो है कहीं, ये तो हमने मतलब भर दिए ना, मैंने कहा कि इन्ना अंजलना हूं, कहां है कुरान, जो लफ्ज नहीं है अगर आप पास से डाल देंगे तो मतलब तो बदल गया। देखे ना इन्ना अंजलना फी लैलतुल कद्र के बाद क्या कहा, तनज्जुलुल मलाइकति व रूह, हां या नहीं, लॉजिकल सोच के देखें। मैं आपको ये मैंने हजूर मुर्शिद करीम से इसकी क्या कहते हैं तस्दीक चाही, तो मैंने सवाल पूछा कि जी क्या ये प्रोग्राम जो है तजल्लिए जात का दीदार कीजिए क्या ये सिर्फ रमजान नहीं हो सकता है? वो आपके इलम में है ना, एक प्रोग्राम शाया करते हैं सिलसिले वाले जिसका उन्वान है तजल्लिए जात का दीदार कीजिए। तो मेरे जहन में ये सवाल आया कि क्या ये सिर्फ रमजान से मुताल्लिक है, सिर्फ ये रमजान नहीं हो सकता है, तो मैंने हजूर मुर्शिद करीम से दरियाफ्त किया, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जब चाहे कर सकें। अगला जुमला ये था कि चूंकि रमजान में इज्तमाई प्रोग्राम होता है, तो वो कम खाना, कम सोना और कम बोलना, वो चूंकि इज्तमाई तौर पे पूरा मुआशरा या इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उसी ढंग में रंग में ढले हुए होते हैं, इसलिए वो निस्बतन आसान हो जाता है। अब देखें ना, आप जब खाना नहीं खाएंगे तो जाहिर है घर वाले परेशान होंगे कि यार ये खाना क्यों नहीं खा रहा। आप कहीं किसी दोस्त से मिलने जाएंगे, वो चाय ऑफर करेगा कि चाय पी लो भाई। आप कहेंगे नहीं मैं नहीं खा पीता, वो कहेगा जी बदतमीज आदमी है, मैं इसकी तवाज़ो कर रहा हूँ या आगे से नखरे कर रहे। तो ये चूंकि मुआशरती कत, उसमें रमजान में बुजुर्गों ने जिन्होंने इसको रमजान से मुख्तस कर दिया या फिक्स किया, उनकी नीयत बहुत नेक थी। उनकी नीयत ये थी कि किसी तरह लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा जागें, ज्यादा मतलब कम से कम खाएं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये कम खाने से आपके नमक और चीनी की मकदारें कम होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सहरी इतनी माशाल्लाह शानदार ठोक के करते हैं कि अगले 10 दिन का राशन मैदे में जखीरा करते हैं। और फिर अफ्तारी में वो कहते हैं वो तो खर्च हो गया सारा 10 दिन का, अब अगले 10 दिन का मैं जरा गौर करें। खवातीन को सारा दिन एक ही फिक्र होती है कि अफ्तारी में क्या 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 होना चाहिए। हाँ या नहीं? तो जब आप देखे ना, अब आप सुनते हैं हदीस, यानी कि ये रिवायत या हदीस के जी हजूर अलैहिस्सलाम दो खजूरों से और एक चुटकी नमक से एक गिलास पानी पी लेते थे, तो ये उनकी अफ्तार थी। हमारी तो अफ्तार की शुरुआत की शीन का पहला शोशा ये दो खजूरें और एक गिलास शरबत। क्यों जी? इसके बाद जनाब पकौड़े तो समोसे जी, क्या सवाल? आपने तवज्जो जी, तवज्जो को कहते हैं कलम। अगर हम इसका बातनी मफहूम देखें तो कलम से क्या मुराद है? कलम से मुराद है आपकी तवज्जो का मरकूज होना। जब तवज्जो मरकूज होगी तो उसकी शक्ल जो है वो कलम जैसी बन जाएगी। मैं इसकी जाहरी शक्ल को तवज्जो पे लागू करके आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जरा इन मानों में देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। मैंने दलाइल दे के कि हजूर अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी क्या कलम पकड़ा भाई, उन्होंने तो दस्तखत करने तक गवारा नहीं किए अपने कलम से, तो कलम नहीं पकड़ा, ये तारीखी तौर पे साबित है। तो फिर उन्होंने इतना इल्म कहां से सीख लिया? असल में जब बंदे की तवज्जो फोकस होके जीरो इन हो जाती है, इसको कलम कहते हैं। ठीक है, जब ये तवज्जो इतनी मरकूज होती है तभी तो वो लौह कलम, कलम जो है वो लौह पे चलता है। जी जी, तो ठीक है, फिर कलम पकड़ के तो उसको सहलाते रहिए, इंशाल्लाह मिल जाएगा इल्म। देखिए जी, एक चीज है, अब कलम से सिखाया, अब मैं सारा दिन नहीं, अब मैं सारा दिन कलम पकड़ के उसको सहलाता रहूं, उसकी मालिश करता रहूं, तो क्या इल्म आ जाएगा? भाई कलम से देखे ना, असल में मुराद क्या है, मैं आपको देखें बारहा अर्ज कर चुका हूं कि अल्फाज का एक मफहूम वो है जो डिक्शनरियों में लिखा है, और एक मफहूम वो है जो कहने वाले के जहन में। ठीक है, और वो कैसे ढूंढेंगे? वो इस तरह ही ढूंढेंगे ना कि जब हम उसको लॉजिकल एनालाइज करेंगे कि भाई कलम से सिखाया तो कल मेरे आप जेन में कह लीजिए कि बहुत ही तशकीक थी, बहुत ही शक भरे हुए थे, तो क्या होता था, मेरे जेन में सवाल आते थे, तो उन सवालों को जस्टिफाई करने के लिए जब मैं अपने पीरो मुर्शिद से मिला तो मेरे पास एक जरिया आ गया कि हर तरह का सवाल पूछूं उनसे। तो ये अल्लाह का जी वाले जी जी मैं सवाल नहीं समझा, लेकिन पहले देखें आप फरमा रहे हैं कुन कहा तो मखलूकात क्या वजूद में आ गई, ठीक है, और जब अलस्तो बे रब्बेकुम कहा तो हवास मुंतकिल हो गई, एक्टिवेट हो गए, ठीक हो गया। तो फिर ये मलाइका और रूह का क्या चक्कर है, अब जरा तवज्जो से सुन लें, जब अल्लाह ने कुन कहा तो सारी तखलीकात की रूह बन गई। रूह से मुराद है कि वो एनर्जी जिसने सारी तखलीकात को, या असल में क्या हुआ, देखें कुन का लुगवी मतलब जो हजूर खिलंदर बाब औलिया ने बताया, कुन से मुराद है कि हरकत में आ, यानी अल्लाह ने एक प्रोग्राम सोचा, उस प्रोग्राम को अल्लाह ने कमांड किया, हुक्म दिया कि भाई तू हरकत में आ जा, यानी उसको वहां से जहन से निकाल कर एक सता जिसको लोहे महफूज कहा या किताबुल मुबीन कहा उसमें मुंतकिल कर दिया। पूरा प्रोग्राम सारी कायनातों का पूरा प्रोग्राम वो एक सता पे मुंतकिल हो गया, लेकिन वहां पे उसकी हैसियत है नक्शे पे बनी हुई चीजों की। तो फिर उसको उस वक्त रूहें जो हैं वो स्टैटिक हैं, अभी उनमें हरकत नहीं पैदा हुई, हरकत उस प्रोग्राम में हुई, पूरा प्रोग्राम शिफ्ट हो गया। जब पूरा प्रोग्राम शिफ्ट हो गया तो फिर उसको एक्टिवेट करने के लिए ये सूरह राफ की आयत नंबर 172 को तवज्जो से पढ़े, वहां पे 172 जी इस वक्त उसके अल्फाज याद नहीं है मुझे, उसका मफहूम यह है कि हमने आदम की जुर्रियत बनी आदम उसकी बनी आदम की जुर्रियत को सामने पेश किया, ठीक है, वो इन्होंने उसका तर्जमा किया उसकी पीठ में से निकाला, वहां जहर का लफ्ज आया, यानी उसको इजहार की हालत में ले आए। तो जरा उसको तवज्जो से पढ़ लें तो सारी मखलूकात को अल्लाह ने अलस्तो बे रब्बेकुम कहा, तो अब अलस्तो बे रब्बेकुम का एक मतलब तो आपने और हमने लिया, क्या मैं नहीं हूं तुम्हारा रब, यह है आम मफहूम जो आम राइज है। अब इसका लफ्जी तर्जमा देखें, अलस्तो क्या नहीं है, बे रब्बेकुम लफ्ज है, बे रब्बेकुम, बे मैंने साथ, रब्बेकुम तुम्हारे रब के साथ, क्या ये सारा निजाम तुम्हारे रब के साथ नहीं जुड़ा हुआ, अल्लाह की सिफत रबूबियत के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो ये छोटे छोटे से जुमले जो हैं इनको हम चूंकि जब सुन रहे होते हैं तो बेतवज्जोही से सुन रहे होते हैं, जब याद करने लगते हैं तो वो फिर अपनी मर्जी के लफ्ज बीच में टांग देते हैं, नतीजा असल बात कुछ की कुछ बन जाती है। वो माल है ना इल्ल बलाग, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।